अब इसको कहा गया कि ये मुबारक रात है, इसकी क्या बरकत है? बरकत का माना भी आपको इससे समझ आ जाएगा कि इसकी बरकत क्या है। वो ये जिस तरह के हमें अपनी उसमें सूरह कदर में ही पता चलता है कि ये खैरुम मिन अल्फी शहर है, बेहतरीन है, हजार महीनों से ज्यादा बेहतर है एक रात, या इसको बरकत कहते हैं। यानी बरकत क्या होती है? यानी थोड़ी सी चीज में इतनी ज्यादा खैर हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। है एक रात, वही जो लो 8-10 घंटे की होगी, लेकिन उसके अंदर जो बरकत है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मोर देन 83 ईयर्स की इबादत, एक रात की इबादत इतनी ज्यादा खैर लाने वाली है, इतना ज्यादा अजर के बायस बनने वाली है। मोर देन 83 ईयर्स, 83 ईयर्स 4 मंथ बनते हैं, 1000 महीने, उससे ज्यादा खैर, उससे भी ज्यादा बेहतर क्या, कितनी खैर है उसके अंदर? अब उलमा कहते हैं इसके ऊपर हम नहीं बता सकते। 1000 महीने से ज्यादा मतलब 2000 महीनों के बराबर, या 10,000 महीनों के बराबर, या 1 लाख महीनों के बराबर, हम नहीं बता सकते। मगर ये पता चल गया कि उससे भी ज्यादा है। अगर तुम एक रात में इबादत करो, 83 ईयर्स तुम इबादत करते रहो, तो 83 ईयर्स कोई इबादत कर नहीं सकता। लेकिन चलो किसी ने कर ली, उससे भी ज्यादा बढ़ के ये एक रात है, तो जिसको ये एक रात मिल जाए, सोचें कि वो कितना खुश नसीब है, कितनी बड़ी बरकत है इसमें। और फिर इसकी और बरकत क्या है? कोई और भी है जी, इसके अंदर जिब्राईल अलैह सलाम उतरते हैं। वैसे तो वो पैगंबरों के ऊपर उतरते थे, उनके ऊपर वही लेकर आते थे, लेकिन वैसे नहीं आते सारा साल, लेकिन इस रात में वो उतरते हैं फरिश्तों की एक फौज के साथ। इतने फरिश्ते उतरते हैं जितने जमीन पे संग्रेजे, इतने पत्थर हैं जमीन पे, इतने फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह, कि ये रात फरिश्तों से भर जाती है। और क्या है, और इसकी बरकत क्या है? सलामती, सलामती है इसमें, खैर ही खैर है इसके अंदर, इतनी सलामती है, फजर के वक्त तक सलामती सलामती है इस रात के अंदर। कितनी प्यारी रात है ये, एक रात तो यानी क्वीन है तमाम रातों की, जितनी पूरे साल की रातें, इतनी जबरदस्त नहीं है जितनी कि ये एक रात है। कि इस एक रात की खैर कोई समेट ले तो उसके तो भाग जाग गए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे महरूम रहा वो हर किस्म की खैर से, भलाई से महरूम रहा। यानी जिसने इसको इग्नोर किया, इसको कुछ समझा ही नहीं, इसमें इसने इबादत की कोशिश ही नहीं की, वो तो हर खैर से ही महरूम हो गया। जो पड़ा सोता रहा, डजंट केयर। और इस रात की खास इबादत क्या है? कयाम उल्लैल, कयाम करना। चलो जो कयाम नहीं कर सकता किसी वजह से, तो कोई भी इबादत करे इसके अंदर, कुरान पढ़ रहा है, वो तस्बीहात कर रहा है, इस्तिगफार कर रहा है, सभी अच्छा है। लेकिन आप सरसर हमने फरमाया, जिसने इस रात में लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से कयाम किया, अल्लाह ताला इसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतकाफ फरमाते थे, ताकि इन सारी रातों में कहीं कोई लैलतुल कदर है, ताकि वो मिस ना हो जाए। और ये भी फरमा दिया, अगर कोई कमजोर हो, नहीं सारी 10 रातें में इबादत कर सकता, तो कम अज कम वो आखिरी 7 रातों में इबादत करें। 7 रातें जरूरी है कि आप उसके अंदर इबादत करें। तो ये कुरान अल्लाह ताला ने ऐसी मुबारक रात में नाजिल फरमाया है। सुभान अल्लाह, इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, बेशक हम हैं वोन करने वाले, डराने वाले। किस लिए नाजिल किया गया, इसका मकसद क्या है, क्यों ये आया कुरान? आप और मैं शायद कोई और मकसद बताते हो, लेकिन ये सब आपके लिए आया। देखें, एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है, जरूर आपको मिलेंगी। हम कहते हैं कि जी ये बड़ा घर में होना चाहिए, घर में रखा हुआ है, और इसलिए भी ये कुरान आया है ताकि जब हम नए घर खरीदें ना, तो फिर हम इसकी एक खत्म करा लिया करें इसका घर में। या देखे ना, जो फौत हो जाते हैं तो फिर भी कुरान चाहिए ना, कि भाई हम उसके बाद फिर सारों को बुलाएं, एक पार्टी करें, उसमें भी सारों को बिठाएं और वो उनसे कुरान पढ़वाएं, एक एक बरसी कर लें हम, पार्टी तो नहीं लेकिन एक यानी उनको सवाब पहुंचाने के लिए हमने कर लिया, या फिर हमने एक यानी कोई बड़ी बड़ा आपने बड़ा खैर किया, बड़ी मोहब्बत है हमें अपने फौज ने, तो बरसी उनकी करनी है, तो उस पर फिर क्या करेंगे, फिर फिर वो कुरान पढ़ लिया। या चलो कोई बीमार हो जाता है, बहुत ही बीमार है, अब वो उसकी जान निकलने वाली है, तो उसके लिए कुरान है। अब मेरे और आपके नजदीक शायद ये डेफिनेशन हो कि क्या मकसद है इसका, हम ये जवाब दें, क्योंकि हम ऐसा ही समझते हैं ना, हमारे नजदीक तो कुरान इसी के लिए उतरा है ना, लेकिन असल में किस लिए उतरा है, अल्लाह ताला ने क्या इसका मकसद बयान फरमाया। असल तो वही बात है ना जो अल्लाह ताला ने, जिसके लिए ये उतारने वाला है वही बताएगा ना, क्या मकसद है इसका, क्यों उसने उतारा। इन्ना कुन्ना मुंजरीन, बेशक हम वोन करने वाले, ताकि लोगों को खबरदार कर ले कि किस चीज से, आखरत से, आखरत के दिन की आ जाने से, उसकी तैयारी से, उस इससे वोन कर दिया जाए कि लोगों तुम्हें उठना है, हिसाब किताब देना है, यहाँ पे मुस्तकिल नहीं रहना, लोगों जागो, गफलत से उठो, समझ जाओ। और वाकई जब हम कुरान करीम इस तरह समझते हैं डेप्थ में, वाकई लगता है ना, इंतजार होता है ना। लेकिन जब हम बस ऐसे बगैर समझे कुरान पे कुरान खत्म कर रहे हैं, तो कोई इंतजार होता है, कोई हमें वार्निंग मिलती है, या हमें कोई उसकी वजह से हम कोई अपनी जिंदगी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जितने लोग माशाल्लाह कोर्स में आते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमारी जिंदगी बदल गई, उससे पहले भी तो वो कुरान पढ़ते ही थे बचपन से, बल्कि कितनी दफा खत्म किया, और कुरान को खत्म करने की भी एक बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है, वो भी की गई उनकी, कि भाई जी बच्चे ने कुरान खत्म कर लिया, लेकिन कितना इंतजार हुआ, कितनी वार्निंग्स मिली, कितनी जिंदगी दुरुस्त हुई। इसलिए कि इसको बिना सोचे समझे पढ़ते जाएं तो वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, सवाब जरूर मिलेगा, मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद यही है कि आपको वार्निंग मिले, क्योंकि ये वार्नर है, समझ लें, ये इंतजार के लिए आया है कि तुम अपने आप को सही कर लो, सीधे हो जाओ, लोगों इस रविश पे चलते रहे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये कितना हमारा हमदर्द है ना, ये कुरान, ये तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है ना। अर रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान पढ़ने का शौक तो है, सूरह रहमान कई लोगों की फेवरेट सूरह है, लेकिन रहमान की सबसे बड़ी रहमत इंसान के ऊपर क्या है कि उसने कुरान सिखा दी, ये बात नहीं समझ आई हमें। सूरह रहमान पढ़ते रहे मगर इसी को ना समझे कि उसकी रहमत की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, इजहार किस चीज से होता है, कि उसने कुरान दे दिया। हम तो सीने से लगाएं इस कुरान को कि ये हमारा कितना खैर ख्वाह है, अल्लाह ताला तूने हमें हमारे पर कितनी बड़ी रहमत कर दी ये नाजिल करते, वरना मुझे आपको क्या पता होना चाहिए था कि मरने के बाद क्या होना है, क्या वहां पे मंजिलें हैं, जन्नत क्या, जहन्नुम क्या, हिसाब किताब क्या, इस जिंदगी को सुधारना कैसे, अल्लाह को राजी कैसे करना है, अल्लाह ताला कौन सी चीजें हैं जो तुझे नाराज करती हैं, अल्लाह तू हमसे क्या चाहता है, तू हमारी जिंदगी कैसी देखना चाहता है, हम किस डगर पे चले, सिराते मुस्तकीम क्या है, कहाँ पता चलता। तो ये उसकी कितनी बड़ी रहमत है कि हमें ये सरप्राइज में नहीं रखा, हम सरप्राइज हो जाते उस दिन, हाय हाय हमें तो पता ही नहीं था, उसने सब कुछ बता दिया। इसके बाद फिर किसी के लिए कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं छोड़ा गया कि कोई एक्सक्यूज बना ले कि हमें पता नहीं था। अब जो फेल होता है वहां पे वो अपने आप को मलामत करे, जिस जिसके पास कुरान है और उसने उसकी तरफ तवज्जो ना की, और उस दिन जाके अगर कुछ भुगतना पड़ गया तो फिर अपने आप पे ही रोए, अपने आप को ही कोसे, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो उसके पास ये कलाम भेज दिया था, उसके घर में था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, चांसेस आए उसके सामने, मगर उसने उनसे फायदा ना उठाया, हमेशा मुंह मोड़ ही के रखा, नजर दूसरी तरफ कर ली। ये फ्लायर तो पहले भी आता रहता है, इनका तो बस एक ही काम है, बस ये तो हर हर वक्त यही कहते रहते हैं, छोड़ो इस चीज को, अभी तो हम बहुत बिजी हैं, अभी हमारे इतने काम है, कोई हमारे पास टाइम है, इन फारिग औरतों का तो टाइम ही बहुत है, इनको करने दो, यही कहते कहते जिंदगी ना गुजर जाए कहीं, फिर उसके बाद पछताओगे कि ये इतनी बड़ी रहमत आई मेरे पास और मैंने क्या किया, ये तो रहमत है, ये मुसीबत नहीं है खुदा के लिए, डरते हैं इससे कि हाय कहीं ये ना हो कि इसको पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सारी औरतों को क्या चीज मना करती है, क्या चीज रोकती है कुरान की तरफ आने से, पता नहीं अगर हमने कुरान पढ़ लिया ना हमें भी इनकी तरह ही बनना पड़ेगा, हिजाब सर पे लेने पड़ेंगे, और ये तो कहते हैं हिजाब, पता नहीं उनको तो सिर्फ यही लगता है कुरान में पढ़ते ही पता नहीं हिजाब ही लेना पड़ जाएगा हमें, मुश्किल पड़ जाएगी, पर्दा करना पड़ जाएगा, वो हमने करना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है, मर्दों की ये है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं, किसी का कोई बहाना, किसी का कोई, लेकिन अंदर ही कोई रुकावट होती है कि इंसान इस कुरान की तरफ नहीं आता। वो बाहर रुकावटें नहीं है, हम बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर नहीं है, हमारे अंदर होती है। हम नहीं आना चाहते, हमारे अंदर ही ये शैतान डालता है ऐसे वसवसे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह आराफ खत्म हो रही है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो, गौर से सुनो, और क्या कहो, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि शैतान इसी के रास्ते में रुकावट डालेगा, इसी की तरफ आने देना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ये मुंजिर है, ये इंतजार करता है, ये जब इनको डराएगा तो ये डर जाएंगे और अपनी आखिरत की तैयारी के लिए दौड़ पड़ेंगे, इन ये अपनी जिंदगियां बदल लेंगे। ये कहां उसको कबूल है, वो तो इतनी मेहनत कर रहा है कि भूले रहो आखिरत को, यही जिंदगी है, खाओ पियो और मजा करो, जिंदगी एक दफा मिलती है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। इस धोखे में ना आए, कुरान आंखें खोलता है, ये जिंदगी मजे उड़ाने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए नहीं मिली, ये तो आखिरत की तैयारी के लिए मिली है। वो जन्नत है जो है एंटरटेनमेंट की जगह, एंजॉयमेंट की जगह, फन की जगह, जो कभी खत्म ना होगा। जिसने इस दुनिया को समझ लिया कि ये मजे की जगह है, वो धोखे में रहा, ये कुरान मेरे मजे खत्म कर देगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। फिर उस दिन कयामत के दिन खुद को ही मलामत करे, किसी और को ना करे, क्योंकि उसके पास मौके थे लेकिन उसने उनसे फायदा ना उठाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये इंतजार करने के लिए है। अब इंतजार भी हमें सच बताऊं तो अच्छा नहीं लगता, कोई हमें वार्निंग दे रहा हो ना, देखो बच जाओ बच जाओ, उस दिन से बच जाओ, उस दिन के अजाबों से बच जाओ, वो बड़ा मुश्किल दिन है। अल्लाह ताला बार बार डरा रहा है। आखिरी आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी वो भी तो यही है ना, डर जाओ उस दिन से जिस दिन तुम जमा किए जाओ, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें वापस लौटना है। लास्ट पैगाम जो इंसानियत को आया वो भी तो यही था, लेकिन हम कहां सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम मीठी नींद सोना चाहते हैं, हम इतने गहरे सोए में हैं, जैसे होता है ना एक बंदा डीप स्लीप में, आप लाइटें जलाएं उसको अच्छा लगता है, कहता बंद करो लाइट, क्यों, तुम्हें उठाना चाहते हैं, उठ जाओ, वो कहता नहीं बंद करो लाइट, वो लाइट में आना नहीं चाहता, सोया रहना चाहता है। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है, ये कुरान हमें रोशनी में लाना चाहता है लेकिन हम सोए रहना चाहते हैं, अंधेरों में पड़े रहना चाहते हैं, हम गहरी नींद सो रहे हैं, हमें कोई रोशनी भी पसंद नहीं आ रही। तो ये इंतजार करता है, ये तो जगा रहा है उस खतरे से जो आगे है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे यही तो फरमाया था सबसे पहले कि लोगों डर जाओ उस दिन से, लोगों ऐसा दिन आने वाला है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है जिसमें फैसला किया जाता है हर अमरे हकीम का। एक तो ये रात की बात की जा रही है कि उसी रात की जो लैलतुल मुबारक है, और ये कौन सी रात है, अभी हमने इसके ऊपर दलील कुरान से तलाश की तो पता चला वो लैलतुल कद्र है जो रमजान की रात है। पहले तो इसके ऊपर कि फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर मजबूत अमर का फैसला इस रात में होता है, इसका मतलब क्या, मतलब कि वो लैलतुल कद्र है। कुरान से हमें ये दलील मिल गई कि वो कोई और रात नहीं है बल्कि वो लैलतुल कद्र ही है। अब ये कहना कि 15 शाबान वो रात है जिसके अंदर तकदीर के फैसले होते हैं, ये बिल्कुल बेदलील बात है, इसलिए कि कुरान की नस, कुरान का प्रूफ है कि वो शाबान की रात नहीं है जिसको हम शबरात कहते हैं, अपने अल्फाज में, अलग शब रात से कोई उसका ताल्लुक, ऐसा कोई रात की ऐसी बात ही नहीं की गई। तो ये एक जहन से निकाल दे, बल्कि जो भी लोग अहादीस पेश करते हैं उस सिलसिले में, वो सारी इस कदर जयीफ है, इस कदर जयीफ अहादीस है। और ये उसके बाद जो उलमा ने कंक्लूड किया, उन्होंने कहा ये 15 शाबान की रात जो है ये ऐसे ही है जैसे बाकी सारी रातें, यानी बिल्कुल नॉर्मल रात है। इसके अंदर अगर कोई समझता है कि नहीं यही तकदीर को वाली रात है, उसने कुरान की देखे नस के खिलाफ बात की ना। कुरान क्या कह रहा है, फीहा युफराकु कुल्लू अमरिन हकीम। या तो आप ये कहें कि ये नहीं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, देखें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ उसी में तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, ऐसे ही पता चल रहा है ना, कुरान आपके सामने है। या तो आप ये कह देंगे कुरान ही नाजिल हुआ 15 शाबान को, ठीक है, कुरान ही 15 शाबान को नाजिल हुआ, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आपने ये भी कुरान की साफ आयत शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसकी नफी कर दी ना। अगर आप मानते हैं कि रमजान में ही नाजिल हुआ, तो यहाँ पे आता है वही रात है जिसके अंदर कुरान भी नाजिल हुआ और उसमें तकदीर का फैसला भी होता है। अब ये कहने वाले कि नहीं उस रात तकदीर का फैसला हो रहा है, तो फिर ये मुझे बताएं ये क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी दलील हमें नहीं मिलती। हाँ, एक मुफस्सिर को इसके ऊपर गलती लगी थी और उसके बाद वहां से लोगों ने ले लिया, और उसके बाद आगे से आगे फिर नहीं कुरान जी नहीं, तकदीर के फैसले इसके अंदर होते हैं। हालांकि जमहूर का, मेजोरिटी का यही फैसला है कि ये यहां से हमें पता चलता है कि ये लैलतुल कदर ही है। इसमें क्या होता है, फैसले सारे फैसले अल्लाह के हुक्म से सादिर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अमर का मतलब क्या है, कुल्लु अमरिन हकीम। एक मतलब लिया गया कुरान, क्योंकि पीछे कुरान की बात आई कि इसमें फैसला किया जाता है हर मजबूत बात का, हकीम बात का, कुरान का, यानी इसका फैसला किया जाता है, ये उतारा गया है, इसको इसके जरिए फैसला होता है। और दूसरा जो है कि यानी इसमें फैसले किए जाते हैं, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक बात है कि इसमें फैसले किए जाते हैं तकदीर के, ठीक है, फैसले उतारे जाते हैं तकदीर के। अब तकदीर, एक तकदीर वो है जो इंसान की, अल्लाह ताला ने जिस वक्त ये जमीन व आसमान भी कायम नहीं हुए थे, उस वक्त अभी यानी पैदा भी नहीं हुए थे ये सब के, हदीस में जैसे आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तखलीक से भी 50,000 साल पहले मखलूकात की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पे था और वो लोहे महफूज में लिखी हुई है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, अकुल्ला शईन अहसैनाहू फी किताब फी इमाम मुबीन। तो वो सारी चीजें वहां पर गिन के लिखी हुई हर चीज, और ये भी हमें पता चलता है अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा किया और उसको कहा लिख, उसने कहा क्या लिखूं, क्यामत तक का इल्म लिख दे सब चीज, ये अल्लाह ताला का इल्म है। फिर एक तकदीर का हमें पता चलता है कि जब रहमे मादर में बच्चा अभी तखलीक पा रहा होता है, तो फरिश्ता पूछता है हर स्टेज पे पूछता है कि या अल्लाह ताला इससे कि ये मतलब है कि बड़ा होगा नहीं होगा, इसकी उम्र क्या होगी, इसका रिस्क क्या होगा, मर्द होगा, औरत होगा, खुशबख्त होगा या बदबख्त होगा, ये फरिश्ता पूछता है, और फिर वो भी तकदीर लिखती जाती है। अब यहाँ पे कौन सी तकदीर है जो इस रात के अंदर उतारी जाती है, तो ये पता चलता है हमें कि ये वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को दे दी जाती है, क्योंकि फरिश्तों के पास भी तकदीर का इल्म नहीं है, तो उनको इस रात में ये फैसला सारा दे दिया जाता है कि अगले साल इस रात तक, लैलतुल कदर तक के सारे फैसले उनके हवाले कर दिए जाते हैं। वो कौन से फैसले, अमरिन हकीम। हकीम का एक मतलब है हिकमत, हिकमत वाले, ये सारे फैसले हिकमत वाले हैं, ये सारे फैसले अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। और दूसरा मुहकम के मानों में हकीम, मजबूत यानी पक्की बात, पक्का, ये अब नहीं बदलेगी, ये पक्की बात है। अब ये कौन से फैसले होते हैं, देखिए इंसान के हक में जितने भी बातें हैं ना, कि किसने मर जाना है इस साल, किसने पैदा होना है, किसकी शादी होनी है, किसको कितना रिस्क मिलना है, बारिशें कितनी बरसनी है, जलजले आने हैं कि तूफान आने हैं कि क्या होना है, किस कौम ने ऊपर जाना है, किस कौम का जवाल आ जाना है, किस बंदे को हिदायत मिलनी है, किसने गुमराह हो जाना है, किसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाना है, किसके साथ कोई बीमारी पेश आ जाएगी, किसके साथ कोई और हादसा पेश आ जाएगा, किसके ऊपर कौन सी आजमाइश आ जानी है, किसके पर के ऊपर रिस्क की फरवानी है, सब फैसले कितनी इंपॉर्टेंट रात है ना, ये सारे फैसले एग्जीक्यूशन के लिए फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। बल्कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बंदा चल फिर रहा होता है, अल्लाह अकबर, वो चल फिर रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि उसका मौत का फैसला दे दिया गया। यानी जैसे समझ लें कि एक एक कैदी को सजाए मौत सुना दी गई हो ना, तो वो तो सजा होती है, लेकिन खैर उस तरह से आपको एक मिसाल देने के लिए, सजाए मौत सुना दी गई हो, वो घूम फिर रहा है, उसको पता ही नहीं उसको सजाए मौत सुना दी गई। इसी तरह एक बंदा है, उसकी मौत का परवाना दे दिया गया, फैसला दे दिया गया, फरिश्तों के हाथों में दे दिया, अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के साल को कौन सा दिन होगा या कौन सा मिनट कौन सा सेकेंड होगा जिस वक्त उसकी जान ली जाएगी, लेकिन वो दे दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता, वो कभी पार्टियां कर रहा है, कभी वो गफलत के अंदर पड़ा हुआ है, कभी वो म्यूजिक सुन रहा है, कभी वो हंस बोल रहा है, खेल रहा है और अपने ऐसे मशगूलों में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि क्या चीज आने वाली है। अल्लाह हू अकबर, ये फैसला दे दिया जाता। अल्लाह हू अकबर, अमर मिन अंदीना, ये अमर, ये हुक्म, ये हमारी तरफ से, ये तकदीर का फैसला हमारी तरफ से। और अगर इसे कुरान मुराद लिया जाता है तो कुरान का हर फैसला हिकमत पे मबनी है और पक्का है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो गया इस रात में, अगर अमर से हमने कुरान मुराद दिया तो, मिन अंदीना, हमारी तरफ से, और अगर तकदीर है तो ये भी अमर से मुराद, अगर तकदीर लिया तो ये भी मिन अंदीना, हमारी तरफ से। इस फैसले में किसी का कोई बस नहीं है। हाँ, आप सरसर में फरमाया कि दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, अल्लाह ताला कुछ चाहे, कुल्लू यौमिन हुआ फी शान, अल्लाह ताला चाहे जिसके ऊपर जो चीज को बदल दे, अल्लाह ताला ने ही तकदीर का भी लिखा है ना, जिसके लिए जो चीज बदल दे अल्लाह ताला ने वो फैसला लिखा है, अल्लाह ताला जब चाहे उसको बदल दे, या पहले से ही बदला हो कि ये बंदा दुआ करेगा तो उसकी वजह से ये चीज बदल जाएगी। इस तरह सिला रहमी करने से उम्र में बरकत हो जाती, बाज कहते हैं, और बाज कहते हैं उलमा कहते हैं कि उम्र में इजाफा हो जाता है, तो ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले हैं। तो फिर क्या हमें होना चाहिए, तकदीर के हर फैसले पे क्या होना चाहिए, जब कह दिया गया अमर मैंने इंदीना, ये उसने कर दिया, ऐसा हो गया, ये ना होता वो ना होता तो ये ना होता, ये कह सकते हैं फिर, या किसी फैसले के ऊपर नाराज हो जाए, हमें मेरे साथ अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, जो अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर क्या कहना, रदीतु बिल्लाहि रब्बुम, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हुआ। ये पता है इतना बड़ा कलमा ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन नबिया, इतना बड़ा कलमा है ये जो हम सुबह को 3 दफा पढ़ते हैं और शाम को, कि जो बंदा ये पढ़ेगा, यानी सिदके दिल से, जाहिर है जिसको वाकई अल्लाह के हर फैसले पे और हर अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर वो राजी है। ये कुरान में सारे हुक्म किसकी तरफ से, अमरन से अगर मुराद कुरान ले, मिन इंदिना, हर फैसला हर हुक्म इसमें किसकी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से है, मौलवियों ने तो नहीं बना दिए, नहीं, इसके अंदर खुद पढ़ के देख लो, ये अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात है। तो फिर इनके ऊपर नाराज होना, इनके ऊपर गिले शिकवे करना, इनके ऊपर राजी ना रहना, दिल में तंगी महसूस करना, हाय हाय ये क्यों आ गया, ये क्यों मेरे लिए मुश्किल हो गई, मुसीबत पड़ गई, ये अल्लाह के हुक्म के ऊपर मुसीबत कहना, क्या ये अल्लाह के फैसलों पे राजी होना, अल्लाह के अहकामात पे राजी होना, खुश होना, दिल से भी खुश हो। बाज दफा हम अमल कर रहे होते हैं, अमल भी करने तक पहुंच जाते, लेकिन दिल तब भी राजी नहीं होता,